विश्व दर्पण। श्रोताओ, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है दुनिया के सबसे पीड़ित अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा। म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान कई वर्षों ही नहीं बल्कि दशकों से चरमपंथी बौद्धों और सुरक्षा बलों की हिंसा का सामना कर रहे हैं और उन्हें बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। हिंसा की ताज़ा लहर में 1000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान बड़ी निर्ममता से मार दिए गए हैं, जबकि कुछ सूत्रों के अनुसार ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। इनमें बहुतों को जिंदा जला दिया गया, हत्या के बाद शवों के टुकड़े टुकड़े करके पानी में बहा दिया गया, पूरे पूरे गांव आग के हवाले कर दिए गए। ये सब कुछ म्यांमार के पश्चिमी राखिन प्रांत में सुरक्षा बलों की निगरानी ही नहीं बल्कि उनके हाथों अंजाम पाया। चरमपंथी बौद्धों ने, जिन्हें दुनिया भर में शांति प्रेमी कहा जाता है, बर्बरता के ऐसे भयानक रूप पेश किए हैं कि सारी दुनिया दहल उठी। आज अगर जनता के स्तर पर देखा जाए तो सारी दुनिया में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। रोहिंग्या मुसलमान जातीय सफाई के इस अभियान से बचकर पड़ोसी देशों की ओर भाग रहे हैं। इस समय बांग्लादेश में उनकी संख्या 3 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। हिंसा की ताज़ा लहर के मामले में एक हमले का उल्लेख बार बार किया जाता है। म्यांमार की सरकार कहती है कि चरमपंथी मुसलमानों ने पुलिस चेक पोस्टों पर हमले किए थे जिनमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यदि सरकार का यह दावा सही है तब भी क्या इसके जवाब में नस्ली सफाया शुरू कर देने का औचित्य मिल जाता है? रोहिंग्या मुसलमानों की इतनी दयनीय दशा हो गई है कि उनके चित्र और वीडियो क्लिप्स देखकर विश्व स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो गए। गत शुक्रवार को ईरान के सभी शहरों में नमाज जुमा के बाद प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने सत्याचार के विरुद्ध नारे लगाए। प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने मीडिया से बातचीत की।
پیغمبر فرمود جایی اگه ظلم میشه ساکت بشینن مسلمان نیستن।
प्रदर्शनकारी ने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि यदि कहीं अत्याचार हो रहा है और हम मुसलमान खामोश हैं तो हम मुसलमान नहीं हैं।
ظالم ترین کسایی که مانند هیتلر و مخوف ترین کسایی مثل چنگیز و مغول این کارو نکرده بودن।
इस प्रदर्शनकारी का कहना था कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो कुछ बर्मा में हो रहा है वो तो हिटलर और चंगेज ने भी नहीं किया था। एक महिला प्रदर्शनकारी तो रोहिंग्या मुसलमानों की पीड़ा को याद करके भावुक हो गई।
به جرم اینکه فقط مسلمانان اینجور شده واقعا الان چند روز فقط نفس می کشم।
बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में भी मजलूम रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में प्रदर्शन हुए।
आप सब जानते हैं और पूरी दुनिया जान रही है, इस्लाम एक इंसानियत और प्यार और मोहब्बत का दर्श देने वाला मजहब है। आज उस मजहब के मानने वाले निहत्ते जिनके पास खाने का सामान नहीं है उनको बुरे तरीके से मारा जा रहा है।
यूरोपीय देशों में भी लोगों ने प्रदर्शन करके रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। जहां इस बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द और उन पर हो रहे अत्याचार देखकर दुनिया भर के लोग दुखी हैं, वहीं म्यांमार की नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची को ये दर्द दिखाई नहीं देता। वो अभी म्यांमार के पास संसाधनों की कमी की बात करती हैं, सुरक्षा बलों पर हमले की बात करती हैं।
No, because I don't think there's ethnic cleansing going on. I think ethnic cleansing is too strong an expression to use for what's happening.
सूची सुरक्षा बलों पर हमले की बात करने के साथ ही नस्ली सफाई से इनकार करती हैं, लेकिन देखने वालों को तो यही नज़र आ रहा है कि म्यांमार में जो कुछ हो रहा है वो नस्ली सफाया ही है। शताब्दियों से बर्मा में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को ये देश अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। बौद्ध समुदाय में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गहरी नफरत भर दी गई है। जनता के स्तर पर ही नहीं बल्कि सरकारों के स्तर पर भी आवाज़ उठ रही है। इस संदर्भ में इस्लामिक गणतंत्र ईरान और तुर्की का नाम विशेष रूप से लिया जाना चाहिए। अनेक संगठनों और हस्तियों ने रोहिंग्या मुसलमानों का खुलकर समर्थन किया। फिलिस्तीन के हमास संगठन, लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन, यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार बंद किए जाने की मांग की। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल इबादी ने रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति पर गहरा दुख जताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया। वेटिकन में अपने भाषण में कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमें रोहिंग्या भाइयों और बहनों के बारे में बड़े दुखद समाचार मिले हैं, मैं उनसे अपनी सहानुभूति जताना चाहता हूँ।
Sulla persecuzione della minoranza religiosa i nostri fratelli Rohingya।
तुर्की ने भी रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर अपना विरोध जताया है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी म्यांमार सरकार की कड़ी आलोचना की है। तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुशोग्लू तथा फर्स्ट लेडी अमीना अर्दोगान ने बांग्लादेश की यात्रा की और रोहिंग्या शरणार्थियों से जाकर मिले। इस अवसर पर पीड़ा और दर्द की तस्वीर बन चुके रोहिंग्या शरणार्थी भावुक हो गए और कोहराम मच गया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने खुलकर कहा कि हम म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में उठाएंगे। हम ओआईसी की बैठक में भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने 20 राष्ट्राध्यक्षों से इस बारे में बात की है।
म्यांमार sürecini de ayın 19'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में प्रबल रूप से अपनी आवाज़ उठाई। राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए।
बायद एहसास वज़ीफ़े बकुनीम, बायद हिमायत कुनीम, बायद कुमक कुनीम।
डॉक्टर रूहानी ने कहा कि हम म्यांमार की सरकार से ये मांग करते हैं कि इस अपराध को बंद करवाए, सेना जो अपराध कर रही है उस पर रोक लगाए।
हम दौलत म्यांमार रो दावत मिकुनीम के बिन जनायात वहशियाने पायान बेदे।
डॉक्टर रूहानी ने कहा कि हम हर स्तर पर सहायता के लिए तैयार हैं, राजनीतिक स्तर पर, मानवीय स्तर पर हम मदद के लिए तैयार हैं, हमारी रेड क्रिसेंट संस्था मदद के लिए तैयार है। डॉक्टर रूहानी ने कहा कि वाकई आज की दुनिया में ये सहन नहीं किया जा सकता कि इतनी सरलता से नस्ली सफाया किया जा रहा है।
वाकई काबिल तहम्मुल नीस्त दर दुनियाए इमरोज که چگونه نسل کشی به این راحتی ادامه پیدا
کند. اسلامی کرانتی که ورشت نتا آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای نے بھی اپنے بھاشنوں میں بار بار کہا کہ میانمار کے پیڑت الپ سنکھیکوں کے سمرتھن میں کھل کر آواز اٹھائی جائے۔ انہوں نے دیش کی نیائے پالیکا کو نردیش دیا کہ قانونی راستوں سے میانمار کے پیڑت الپ سنکھیکوں کا مدعا اٹھائے۔ इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कई साल पहले भी रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए गंभीर अत्याचार पर खुलकर अपना विरोध जता चुके हैं। उस समय भी रोहिंग्या मुसलमान अत्याचार से पीड़ित होकर बांग्लादेश में शरण लेने पर विवश हो गए थे। रोहिंग्या मुसलमानों की पीड़ा देखकर जहां पूरे संसार में लोग दुखी हैं, वहीं भारत की वर्तमान सरकार ने इस मामले में बड़ा विचित्र पक्ष अपनाया है। केंद्रीय सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने हालिया बयान में कहा कि म्यांमार से भागकर आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को कोई भी राहत दे पाना सरकार के लिए बहुत कठिन होगा। पटना में एक बैठक में बोलते हुए नकवी ने कहा कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार भी इसे देख रही है, लेकिन जब उनके राष्ट्र ने ही उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है तो मैं नहीं समझता कि रोहिंग्या मुसलमानों को हम कोई राहत दे पाएंगे। मोदी सरकार के एक अन्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को देश से वापस भेजने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि रोहिंग्या मुसलमान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अतः उन्हें वापस भेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने इन शरणार्थियों को आतंकवादी तक कहा। वैसे भारत में मजलूम रोहिंग्या शरणार्थियों के समर्थन में भी व्यापक रूप से आवाज उठी और अनेक गलियारों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये शरणार्थी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। शरणार्थियों को वापस भेजने के सरकार के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है। जमीयत उलमा हिंद के नेता अरशद मदनी
और जमीयत उलमा वहाँ रिफ्यूजी होने की हैसियत से जो आए हैं उस दुनिया के बैनुल अक्वामी कानून के एतबार से जब तक उनके मुल्क में अमन ना हो उस वक्त तक वो वहाँ नहीं भेजे जा सकते हैं। इस बुनियाद के ऊपर हमारी ये कोशिश होगी कि वो जिस तरह भी राहत के साथ रह सकते हैं उनको राहत के साथ रहना चाहिए और जमीयत उलमा बजात खुद उनकी मदद भी कर रही जहाँ तक जिस तरह भी हम मदद कर सकते हैं। हम इन हालात को देख रहे हैं और बगौर से देख रहे हैं और हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह इस सिलसिले के अंदर मजलूमों की मदद करने में हम कोर्ट से कामयाबी हासिल।
भारत के अनेक वरिष्ठ पत्रकारों, नेताओं और समाज सेवियों ने भी सरकार के फैसले को अनुचित ठहराया है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ।
रोहिंग्या मुस्लिम्स बहुत बड़ी तादाद में वो जगह छोड़ रहे हैं, बांग्लादेश में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है क्योंकि उनके खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में हिंसा हो रही है। रोहिंग्या मुस्लिम्स एक ऐसा ग्रुप है जो जिसमें मुस्लिम्स ही ज़्यादा हैं और वो राखीने नाम का इलाका है, पश्चिम म्यांमार का, पश्चिम बर्मा का इलाका है राखीने नाम का, वो वहाँ रहते हैं। ये लोग जब अंग्रेज़ हम पर राज करते थे तो उस इलाके से वहाँ गए थे जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, लेकिन बर्मा वालों ने इन्हें कभी अपना नहीं माना। उनका ये कहना है कि सिटीजनशिप जो है, नागरिकता सिर्फ उन्हीं रोहिंग्याज को दी जाएगी जिनके बड़े बुज़ुर्ग जो थे 1823 से पहले यहाँ आकर बसे थे। हमारे प्रधान सेवक ने बात की थी वसुधैव कुटुंबकम की। उधर ओंग सान सूची जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है शांति के लिए। अब जो दो ऐसे नेता हों जिनके विचार इतने प्रबुद्ध हों कि एक को नोबेल प्राइज़ मिला, दूसरे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स की समस्या उनके लिए यकीनन छोटी समस्या होनी चाहिए। हमें उम्मीद है इसका वो हल ढूंढेंगे।
इस तरह यदि देखा जाए तो रोहिंग्या पीड़ितों का विरोध करने वालों में भारत सरकार अकेली खड़ी दिखाई देती है।